नमस्कार, आप सभी दर्शकों का स्वागत है हमारे प्रोग्राम माइंड मैटर्स में। आज हम आपके साथ डिस्कशन करेंगे थॉट पावर के विषय में। जैसा कि आपको मालूम है, हमने अपने पिछले एपिसोड्स में थॉट के बारे में बात की कि विचार क्या होते हैं, कितने प्रकार के विचार होते हैं और इन विचारों का ही हमारे शरीर पर, हमारे मन पर पूरा कंट्रोल होता है। वो विचार ही अगर हमारे अच्छे होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, तो हमारे जीवन की संरचना को ही बदल डालते हैं। तो पिछली बार जब हम बात कर रहे थे डॉक्टर गिरीश पटेल से, आज स्टूडियो में हमारे साथ फिर डॉक्टर गिरीश पटेल हैं। उन्होंने हमें बताया कि कितने प्रकार के थिंकिंग होती है। तो डॉक्टर साहब, आपने जो थिंकिंग हमें बताई थी, नेगेटिव, पॉजिटिव थिंकिंग, वेस्टफुल थॉट्स, इस तरह के आपने हमें थॉट्स बताए थे, उनमें से दो थॉट्स आप छोड़ गए थे। एक थॉट था एलिवेटेड थॉट्स और दूसरा था जीरो थिंकिंग। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि क्या आप एलिवेटेड थॉट्स क्या होते हैं उसके बारे में रोशनी डाल सकते हैं।
एलिवेटेड थॉट्स और पॉजिटिव थिंकिंग को अलग क्यों किया? कहीं ये समझते हैं कि वो भी तो पॉजिटिव थॉट्स है, लेकिन पॉजिटिव थॉट्स आम प्रकार के भी हो सकते हैं, परंतु एलिवेटेड थॉट्स से मेरा संबंध है कि जो सचमुच हमको हायर लेवल पर ले जाते हैं। स्पिरिचुअली इट एलिवेट्स अस,
एनलाइटनमेंट।
हाँ, वो हाँ, एनलाइटनमेंट की ओर ले जाएं,
एनलाइटेंड सोल,
वो भी बात ठीक है। और ये जो विचार है वह स्पिरिचुअलिटी के साथ कनेक्टेड है। आत्म उन्नति, परमात्मा से संबंध जोड़ना या परमात्मा की प्राप्ति, इन बातों के साथ वह विचार जुटे हुए हैं, इसलिए उसे भिन्न किया।
मतलब किसी का अच्छा हो, गरीब आदमी की मदद करें, किसी का भला करें, बीमार व्यक्ति को दवाई दें, ये एक पॉजिटिव
पार्ट
है। लेकिन इसको एक स्पिरिचुअल लेवल पर हम ले जाएं,
हाँ,
एक एलिवेशन की तरफ कि उसका कल्याण हो, आत्म उन्नति हो। क्या आप यही कहना चाहेंगे कि
उस आत्मा की आत्म उन्नति हो,
ये एक
एलिवेटेड है कि भी उस व्यक्ति को कपड़ा मिल जाए, उसका एजुकेशन हो जाए, ये भी अच्छा है, परंतु वो पॉजिटिव थॉट है। और एलिवेटेड थॉट है कि भी उस आत्मा का भी कल्याण हो
जी।
और साथ साथ अपने बारे में अगर सोचते हैं तो आत्मचिंतन के विचार वह सचमुच पॉजिटिव विचार है। मैं आपको एक थोड़ी गहराई में सोचा है कि भी रियली जब हम ये एलिवेटेड थॉट्स करते हैं तो क्या स्टेज बनती है
जी।
हो सकता है कि हमारे सभी दर्शक मेरी बात को पूरा स्वीकार न भी करे, पर थोड़ा चिंतन है, मैंने अनुभव किया है, कहीं समझते हैं कि सचमुच इस प्रकार का पुरुषार्थ होना चाहिए। और साइंटिफिकली भी ये सत्य है। जैसे पांच स्टेजेस होती है, एक तो हमारा पहला विचार होता है कि मोहित अच्छा है या बुरा है
जी।
हाँ, कि भी मोहित अच्छा है, राकेश बुरा है, तो ये हुआ भी हमारा, ये अप्रोच है एक। फिर दूसरा अप्रोच है, सेकंड लेवल, जब आप थोड़ा प्रोग्रेस करते हैं तब आता है कि मोहित मोहित है, न अच्छा है न बुरा है, तो वह एक सेकंड स्टेज हुई। फिर थर्ड स्टेज है हमारे विचार की कि भी मोहित में आत्मा है, मोहित है परंतु मोहित में एक स्पिरिचुअल एनर्जी है। स्टिल द नेक्स्ट फोर्थ लेवल इज मोहित आत्मा है, मोहित इज अ स्पिरिचुअल बीइंग हु इज यूजिंग दिस बॉडी। मैं स्पिरिचुअल एनर्जी हूं को जो ये शरीर का उपयोग कर रही
की तरफ चले।
हाँ, और थोड़ा आगे यह है कि भी ये भी बहुत अच्छा है कि भी सचमुच मैं आत्मा हूं, मैं स्पिरिचुअल एनर्जी हूं और मैं यह शरीर का उपयोग कर रही हूं। यह शरीर केवल एक साधन है
जी,
यह शरीर केवल एक वस्त्र है, उसका मैं उपयोग कर रही हूं। और अब हाईएस्ट स्टेज है, वह है कि मोहित आत्मा यह शरीर है ही नहीं
जी।
क्वांटम फिजिक्स में भी अगर देखा जाए तो क्वांटम फिजिक्स में कहते हैं कि दिस बॉडी इज जस्ट वाइब्रेशंस, नथिंग एल्स। तो यह एक स्टेज को बनाना वह मैं समझता हूं एलिवेटेड थॉट है।
इसका प्रैक्टिकल यूटिलिटी इस थिंकिंग की क्या होती है?
अच्छा, इस थिंकिंग तो प्रैक्टिकल यूटिलिटी तो ये है,
एक आम व्यक्ति ने समझ लिया कि वो एक आत्मा है, उसका एक प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन,
उसका एक तो प्रैक्टिकल उसकी यूटिलिटी ये है कि आप में डिटैचमेंट आएगी। इस शरीर को कहीं दर्द हुआ, तकलीफ हुई, तो भी उससे आप ऑटोमेटिकली डिटैच होंगे। जैसे हमने सुना भी कहीं बड़े बड़े योगियों को भी बीमारी हुई, रमन महर्षि को भी कैंसर हुआ, तो भी वह लोगों को भले बीमारी तो हुई परंतु वह स्पिरिचुअली एलिवेटेड सोल्स थी, तो वह पेन से वह डिटैच हो सकी। रमन महर्षि ने तो यह भी कहा कि भी जैसे गाय के गले में हार है या नहीं है, उसे फर्क नहीं पड़ता है। तो ऐसे ही यह शरीर है या नहीं है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो दिस इज दैट एलिवेटेड थिंकिंग कि जिससे जब आध्यात्मिक पुरुषार्थ करते हो तो एक ऐसी अवस्था आ सकती है। और एक बहुत बड़ा जो फायदा है वो अप्रोच का, कि जो हमारी एटीट्यूड है वो एटीट्यूड में बहुत बड़ा परिवर्तन आ सकता है। और एक भले इसको कोई कहे प्रैक्टिकल नहीं भी है, परंतु रियलिटी इज कि हमारे में वाइब्रेशंस है। और आज जितना आप फिजिकल बातों के बारे में सोचते हैं, यू आर गोइंग टू लो लेवल ऑफ वाइब्रेशन। जब आप ये एलिवेटेड थॉट्स करते हैं तो आपका जो वाइब्रेशन का लेवल है वह हाई होता जाता है। और जितना आपका वाइब्रेशंस का लेवल हाई होगा उतना एक तो आप एक अति इंद्रिय आनंद का भी अनुभव करेंगे, एंड दैट इज अ रियल स्टेट ऑफ बीइंग कि जिसका हमने कभी अनुभव नहीं किया है, बहुत कम लोगों ने अनुभव किया।
प्रैक्टिकली देखा जाए तो आत्म उन्नति के साथ साथ हम ये कहें कि कोई बुरा भी आपका कर रहा है उसका भी आप कल्याण सोचें, ये भी एक एलिवेटेड थॉट्स में आ जाएगा।
ठीक है, ये भी एलिवेटेड थॉट्स, अगर उसके साथ भी आप आध्यात्मिकता को भी जोड़ो।
बिल्कुल, आध्यात्मिकता को जोड़ते हुए
उस बात में साथ आध्यात्मिकता को भी जोड़ो कि इस आत्मा का भी कल्याण हो
जी,
वह भी सत्य को पहचाने, और सत्य को पहचान करके यह भी वो जो आत्मा की हाईएस्ट स्टेज है वह स्टेज तक पहुंचे, तो यह विचार भी एलिवेटेड थॉट।
तो एलिवेटेड थॉट्स हम यही समझेंगे कि रियल स्पिरिचुअलिटी या मेडिटेशन जो व्यक्ति प्रैक्टिस करता है वो पॉजिटिव थिंकिंग के साथ साथ एलिवेटेड थिंकिंग उसकी नेचुरल हो जाती है।
और एक बात है कि एलिवेटेड थॉट्स कौन से, कि परमात्मा से सर्व संबंधों का अनुभव करना।
जी,
आज हम यह कोशिश करते हैं कि देहधारियों से प्यार प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, परंतु देखेंगे कि भी देहधारी हमें एक तो सदा के लिए प्यार दे नहीं सकते
जी,
दूसरा वह जो प्यार देते उसमें कहीं ना कहीं छोटी सी भी शर्त है, जब तक आप उस शर्त को पूरी करते हैं आपको प्यार देते हैं, अगर वो नहीं है तो प्यार में भी कमी आएगी। मैं कई बार ये उदाहरण देता हूं कि आप सिर्फ सोचो ये कि आज आप स्वस्थ है, कमा रहे हैं, घर का कामकाज कर रहे हैं, तो परिवार में सभी आपको रिस्पेक्ट देते हैं, सभी प्यार देते हैं, परंतु कल आपका सीरियस एक्सीडेंट हो जाए और 6 मास, 1 साल, 2 साल तक आप बेड रिडन हो जाए।
बिल्कुल,
तो बस सोचो, मेरी वर्कशॉप में मैं कराता हूं लोगों को कि बल कल्पना करो कि भी क्या होगा, पहले दिन जो आपके रिश्तेदार आपसे व्यवहार करेंगे और 2 साल के बाद करेंगे उसमें क्या फर्क होगा। तो लोग तुरंत जवाब देते हैं, लोग कहते 2 साल के बाद, कहते तब तो सोचेंगे मरे तो अच्छा है, कई लोग कहते अरे मरता भी नहीं है। तो आज देखो लोग प्रैक्टिकली भी जब चिंतन करने लगते हैं तो उनके इस प्रकार के विचार आते। इसका मतलब यह नहीं कि नफरत करो, नहीं, रिश्तेदारों से नफरत करने की बात नहीं, परंतु डिटैचमेंट की स्थिति बनना आवश्यक है।
तो जो यथार्थ प्यार है, शांति है, जिसको हम लोग बाहर ढूंढते रहते हैं, ये निरंतर और निस्वार्थ, ये हमें केवल परमात्मा
से ही मिल सकती है।
और यही थिंकिंग हम रखते हैं अगर कि परमात्मा से लेकर सर्व आत्माओं को, सर्व संसार को यह मिले, तो ये एलिवेटेड थिंकिंग आ जाता है।
और ये थॉट से और एक एडवांटेज क्या होगा कि जो सबसे ज्यादा कंप्लेन है कि लोग ध्यान सीखना चाहते हैं, उनको रुचि भी है, परंतु ये कहते कि मन एकाग्र नहीं होता है।
जी हाँ,
जब परमात्मा को याद करने बैठते हैं तो और विचार आते हैं। अगर इस प्रकार का एलिवेटेड थिंकिंग सचमुच हुआ तो जब आप आधा घंटा 20 मिनट परमात्मा की याद में बैठते हैं तो पूरा उसमें खो जाएंगे, एक भी संकल्प आपका और नहीं चलेगा। तो इसके लिए ये एलिवेटेड थॉट जरूरी है। और कहीं ये भी कंप्लेन करते कि भाई ऐसा करेंगे तो लोगों से हमारा डिटैचमेंट हो जाएगा, क्या हम लोगों से नफरत करने लगेंगे? नहीं, आप जरूर अपनी जिम्मेवारियों को निभाएंगे, जो कार्य कर रहे उल्टा और अच्छे
और
से
अच्छा,
करें,
क्षमता से और एफिशिएंसी से ज्यादा।
अगर ऑफिस में आप काम कर रहे तो और आप एफिशिएंट बनेंगे, घर की संभाल और अच्छे से करेंगे। अटैचमेंट के कारण हम ठीक से कर नहीं पा रहे हैं
जी। डॉक्टर साहब, एलिवेटेड थिंकिंग के बाद जीरो थिंकिंग, इस कॉन्सेप्ट को आप क्लियर करेंगे, क्योंकि जीरो थिंकिंग का एक थॉटलेस स्टेज लगती है, तो आप इसके बारे में क्या कहना?
हाँ जी हाँ, ये कई कहते हैं कि भी जीरो थिंकिंग पॉसिबल नहीं, परंतु अगर हम उसके रूट को समझे, अगर ये समझ ले कि भी विचार उत्पन्न कहां से होते हैं, उसको अगर आप समझ लो तो सहज है कि भी उसके रूट को ही खत्म कर देना। आप भी डॉक्टर हैं, मैं भी डॉक्टर हूं, तो एक डॉक्टर का उदाहरण देता हूं कि एक पेशेंट को दो अलग अलग दिन दो डॉक्टर के पास जाना है। पहले दिन जब वो पहले डॉक्टर के पास जाता है और उसके कंसल्टेशन के वेटिंग रूम में बैठता है तो देखता है कि फर्नीचर एकदम टूटा फूटा है, 15 साल से कलर भी नहीं किया गया है, वहां जो इंडोर प्लांट्स है वह भी मर रहे हैं। तो पेशेंट क्या सोचता है, क्या सोचेगा,
नहीं है बिल्कुल,
कैसा बेकार है डॉक्टर,
है
ना, इसके पास कोई पेशेंट ठीक नहीं होता होगा। यह भी सोचेगा कि इसके इंडोर प्लांट्स मर रहे हैं, मैं इसे ट्रीटमेंट लूंगा तो मैं भी मर जाऊंगा,
चाहे वो कितना भी अच्छा डॉक्टर,
अच्छा भले अच्छा हो, लेकिन उसके विचार चलेंगे। दूसरे दिन वो दूसरे डॉक्टर के पास जाता है तो वातावरण एकदम भिन्न है। शहर के सबसे अच्छे आर्किटेक्ट ने उसका इंटीरियर डिजाइन किया है, सभी चीजें इंपोर्ट की हुई है, फर्नीचर बहुत एक्सपेंसिव है, तो भी वो क्या सोचता है कि इसकी फीस बहुत ज्यादा होगी, इतने पैसे कहां से लाया, लोगों के जेब काटता होगा। तो ऐसे जब एक विचार आया कि यह फर्नीचर सारा बेकार है तो दूसरे 10 आएंगे, वहां यह आया कि भी ये सब कुछ एक्सपेंसिव है तो भी उसे दूसरे 5 विचार आएंगे, परंतु उसके बदले वहां पर कैमरा रख दो और वीडियो कैमरा इस दोनों क्लिनिक में ले जाओ, तो कैमरा क्या करेगा, सोचेगा नहीं सोचेगा, कैमरा
नहीं सोचेगा,
पिक्चर लेगा, जैसा है वैसा पिक्चर लेगा
जी।
तो जीरो थिंकिंग का अर्थ भी यह है कि चीज जैसी है वैसी देखो। अगर हम ये आदत डाल दे तो आगे के विचार नहीं होंगे। आज क्या हो रहा है, चेन रिएक्शन है कि हम कोई व्यक्ति को मिलते हैं, उसने बहुत अच्छे कपड़े पहने हैं, तो बस उसको देखा तो वो कपड़े से रिलेटेड हम दूसरे 5 विचार करने लगते हैं
जी।
तो वह खत्म होना चाहिए। इसलिए जीरो थिंकिंग के लिए आवश्यक जो स्टेप है प्रैक्टिकल, कि सारा दिन में अनेक बार, 100 बार 200 बार अपने आप को कहो कि मेरी आंखें कैमरे का काम करे, है ना, जब जब भी पॉसिबल है। सारा दिन पॉसिबल नहीं है, यह संभव भी नहीं, ना आवश्यक है कि आप सारा दिन जीरो थिंकिंग में रहो। मैं तो सोचता हूं कि अगर 10 मिनट भी व्यक्ति न सोचे तो उसमें बहुत पावर आ जाएगी, परंतु हम तो 1 सेकंड में 1-2 विचार कर देते हैं। तो इसलिए यह अभ्यास बहुत मदद रूप हो सकता है। और एक जो बात है कि जीरो थिंकिंग क्यों करें, आज मनोविज्ञान में भी यह कंसेप्ट कहीं स्वीकार करने लगे हैं कि हमारे अंदर जबरदस्त शक्ति है
जी।
हमारे में इतनी जबरदस्त पावर है कि जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते, जिसको कहा कि भी हमारे में एक ऐसी डीपर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस है विच हैज इन्फिनिट ऑर्गेनाइजिंग कैपेसिटी
जी,
कि जो सुपर इंटेलिजेंट है, जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते, जिसको सुप्रा कॉन्शियस कहा
जाता है।
तो ये सुप्रा कॉन्शियस में सचमुच ये अनलिमिटेड पावर है, परंतु ये सुप्रा कॉन्शियस वह सोया हुआ है, सचमुच एक फरिश्ता है कि जो कमाल कर सकता है, परंतु ये फरिश्ता सोया हुआ है।
हमारी कॉन्शियसनेस से डिफरेंट है,
हमारी कॉन्शियसनेस का ही पार्ट है,
इट्स द
डीपेस्ट पार्ट ऑफ अवर कॉन्शियसनेस। जैसे कि भाई एक एटम अगर लो तो इलेक्ट्रॉन्स रोटेट करते रहते हैं और उसके सेंटर में न्यूक्लियस है,
तो उसी का एक आप कह सकते हैं कि इमेजिनेटिव पावर है इसकी।
हाँ, या तो आत्मा का ही वह हिस्सा है, आत्मा का वह न्यूक्लियस है, कहे
न्यूक्लियस है
कि वह न्यूक्लियस में जबरदस्त शक्ति है, परंतु कहेंगे कि वह पावर डॉर्मेंट है, उसको अभी तक हमने जगाया नहीं है
जी।
अगर उसको जगा दे तो सचमुच कमाल हो सकती है।
तो आप जिसको साइंटिस्ट, आप इस कॉन्सेप्ट को आपने डिफाइन किया, समझाया, तो जो मेडिटेशन आप प्रैक्टिस करते रहे हैं ब्रह्मा कुमारी के साथ, क्या उससे ये अवेकनिंग बड़ी इजीली होती है या उसका कोई प्रैक्टिकल यूटिलिटी होती है हमें इसको?
जरूर उसको अवेकन तो कर सकते हैं
जी।
थोड़ा सा मैं आपको ये बताऊं जिससे क्या कर सकते हैं। नहीं, एक फिजिक्स का कंसेप्ट है, सब एटॉमिक फिजिक्स का, जिसको कहा क्वांटम जंप
जी।
क्वांटम जंप मतलब क्या कि मुझे दिल्ली से बॉम्बे जाना है तो कोई ना कोई रास्ता अपनाना पड़ेगा, मैं ट्रेन में जाऊं, प्लेन में जाऊं, हेलीकॉप्टर में जाऊं, परंतु मुझे वह रास्ता क्रॉस करना पड़ेगा।
बिल्कुल।
परंतु फिजिसिस्ट ने देखा कि एक मिली सेकेंड में एक एटम दिल्ली में है, दूसरे मिली सेकेंड में बॉम्बे में मिलता है। तो उन्होंने यह पाया कि उसने यह रास्ता क्रॉस नहीं किया, एक क्वांटम जंप लगाई ना, उसी को यह जो है वो नाम दिया गया
जी।
तो हम अपने जीवन में जो प्राप्तियां करते हैं, ऐसा कहेंगे भौतिक दुनिया की भी प्राप्तियां, जो कुछ भी आप हासिल करना चाहते हैं, और आध्यात्मिक पुरुषार्थ की प्राप्तियां, उसमें भी हम क्वांटम जंप लगा सकते हैं
जी।
कब? अगर सुप्रा कॉन्शियस को जगा दे। एक देखो सिंपल सा उदाहरण देता हूं कि भाई ये क्या, आप कहेंगे कि भी प्रैक्टिकली बताओ कि कैसे कब हुआ है किसी को
जी।
ना, तो जब विवेकानंद शिकागो में खड़े हुए वर्ल्ड असेंबली ऑफ रिलीजन में, और लोगों के सामने उन्होंने कहा कि माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ अमेरिका, तो सारे के सारे लोग खड़े हो गए, उनको स्टैंडिंग ओवेशन दिया, 5 मिनट तक तालियां बजती रही। इतना अच्छा रिस्पांस उनके पहले किसी को भी नहीं मिला था, और वह रातों रात जग प्रसिद्ध हो गए। पहले तो भटक रहे थे, कुछ समय रेलवे स्टेशन पर बिताया, बहुत सारी तकलीफें हुई। तो इसको मैं कहता हूं ये कैसे हुआ कि उनका सुप्रा कॉन्शियस जाग गया था, कि जिसके कारण ये क्वांटम जंप वह लगा सके। और सुप्रा कॉन्शियस को जगाने में कहते दो चीजें हैं, एक तो कि जब आप टोटली 100% अपनी सुध-बुध को खो देते हैं, जब आप 100% समय और ये दुनिया के विचारों से परे चले जाते हैं, तब सुप्रा कॉन्शियस तक पहुंचते हैं।
क्या ये फिजिबल है, इतना आसान है कि आप दुनिया के विचारों से भी परिपूर्ण, मतलब दूर चले जाना और हट जाना इनसे?
मोहित, मैं ऐसा कहूंगा बड़े आसान नहीं है, लेकिन आप पुरुषार्थ करो तो संभव है
जी।
क्योंकि एवरेस्ट की चोटी पर तो कुछ लोग ही पहुंचेंगे
जी।
भई ये कहे कि भी एवरेस्ट के चोटी पर पहुंचना आसान नहीं है, इसलिए पुरुषार्थ करो ही नहीं
जी।
तो ऐसे ही भले यहां पहुंचना आसान नहीं है, परंतु जो व्यक्ति कर रहा है आध्यात्मिक पुरुषार्थ, उसको ये लक्ष्य रखना चाहिए, और उसकी अगर स्टेप बाय स्टेप मेथड को हम समझ ले तो ये असंभव भी नहीं है।
तो आप किस तरीके से ये टारगेट को अचीव करने के लिए स्ट्रैटेजी बताते हैं? जैसे आप मेडिटेशन प्रैक्टिस करते हैं, मैं उसी बात पर वापस आता हूं कि हमें रियलाइज हुआ कि एक हमें क्वांटम जंप लेनी है, सुपर कॉन्शियसनेस को अवेक करना है, उससे बेहतर हो जाएगी हमारी लाइफ, हमारी थिंकिंग बहुत प्योर हो जाएगी, या जिसे कहेंगे एक जीरो थिंकिंग हो जाएगी जिसमें हम साक्षी रूप से सब कुछ देख सकेंगे, यानी कोई भी सिचुएशन हमें अफेक्ट नहीं करेगी, हमारा एक बैलेंस रहेगी, एक न्यूट्रल हमारा थिंकिंग चलता रहेगा। तो इसको कैसे अचीव किया जाना चाहिए?
एक तो ध्यान का अभ्यास वह सर्वोत्तम है, क्योंकि रिलैक्सेशन में भी हमें शरीर के बारे में तो भान है कि मैं बॉडी को रिलैक्स कर रहा हूं।
जी हाँ।
ध्यान में यह लक्ष्य होता है कि मुझे शरीर के भान से परे जाना है, और बल एक दिन में नहीं होता है, आप करते रहेंगे तो एक बार ऐसी स्थिति आती है तब सचमुच आप अपनी सुध-बुध को खो देते हैं, टाइम और स्पेस के बियॉन्ड चले जाते हैं। और ऐसी स्थिति हर एक साधक में आती है कि नहीं आती, कभी कभार ये अवस्था जरूर आती है, परंतु इसकी अभी जो सेकंड स्टेज है कि जब वह स्थिति आती है उसके बाद जो आपको पहला विचार आता है वह सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर पहला विचार आपको ऑर्डिनरी आया कि मुझे एक प्रमोशन मिल जाए तो अच्छा है, तो और कुछ नहीं होगा, आपको प्रमोशन मिल जाएगा, क्योंकि सुप्रा कॉन्शियस ने उसी विचार को कैच कर लिया। तो इसलिए साथ साथ हमारी प्रगति का एक बहुत बड़ा महान विचार भी हमारी बुद्धि में क्लियर होना चाहिए। जैसे हर एक कंपनी का अपना मिशन स्टेटमेंट होता है
जी,
तो ऐसे हम भी अपने जीवन में आप क्या प्राप्त करना चाहते हैं उसका एक मिशन स्टेटमेंट बनाइए कि जो बहुत ऊंचा हो।
तो राजयोग मेडिटेशन में ये स्टेटमेंट जो आप कहते हैं, ये अवेयरनेस आप लाना चाहते हैं, इसकी अवेयरनेस आने से कितना कंफर्ट लेवल हमारे अंदर आ जाता है, हम किस तरह के एक्शंस परफॉर्म करते हैं, क्या हम नॉर्मल कार्य भी उसी तरीके से करते रहते हैं, या हम अपने प्रोफेशन से थोड़ा हट जाते हैं, क्या आप इसके बारे में कहना चाहेंगे?
नॉर्मल कार्य तो वैसे ही करेंगे, प्रोफेशन से हटेंगे नहीं, आपने लक्ष्य निर्धारित किया है, दिन में आप दो बार जब ध्यान कर रहे हैं तब उसको आप अंत में रिपीट कर,
लेकिन कर्म के प्रभाव में नहीं आएंगे।
हाँ, कर्म के प्रभाव में बिल्कुल नहीं आएंगे,
ना कर्म के फल में ना कर्म की कोई और प्रभाव में आएंगे, बस कर्म साक्षी रूप से करते चले जाएंगे।
बिल्कुल, बहुत अच्छा कहा आपने।
तो उससे ये रहेगा कि मन जो है बहुत शांतमय हो जाएगा।
हाँ जी, बहुत हाँ। जाएगा। और एक जो काम इसके लिए करना पड़ेगा, एक तो ध्यान का अभ्यास और दूसरा जो है कि भी निश्चिंत हो जाओ
जी।
अगर आप निश्चिंत होंगे जीवन में तो वो सुपरा कॉन्शियस तक पहुंच सकेंगे
जी। निश्चिंतता मैं समझता हूँ सेटिस्फेक्शन या संतुष्टता के साथ ही आती है, या एक फेथ होता है सुप्रीम पर।
हाँ,
और अगेन
हाँ।
बात वही आती है कि जो रियल ध्यानी व्यक्ति होता है या जो रियल योगाभ्यास करता है या यथार्थ मेडिटेशन करता है, जैसे आप मेडिटेशन करते आए हैं, तो निश्चिंतता जीवन में स्वतः आ जाती है।
हाँ,
क्योंकि उसमें यह अवेयरनेस होती है कि जो कार्य होगा वो यथार्थ होगा और उसमें मेरा और सर्व का कल्याण ही समाया हुआ होगा।
बहुत अच्छा है, ऐसी यही स्टेज है। इस प्रकार की जब स्थिति आती है तो न केवल संतुष्टता लेकिन आपने निश्चिंतता भी साथ साथ में है।
जी हाँ, बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब, ये जो आपने बताया इसमें एक पॉजिटिव थिंकिंग, उसके बाद एलिवेटेड थिंकिंग और एक जीरो थिंकिंग, तो राइट थिंकिंग और इन पॉजिटिव थिंकिंग में क्या फर्क आ जाता है? कई लोग कहते हैं आप सही सोचिए, विचारधारा सही रखिए, क्योंकि हर व्यक्ति एकदम एलिवेटेड थिंकिंग पर नहीं पहुंच सकता।
हाँ,
या कई बारी एक मूंझ भी सकता है व्यक्ति। हाँ, की ये जीरो थिंकिंग क्या है।
हाँ,
तो प्रैक्टिकली इसके लिए हाँ, आप क्या टिप बताना चाहेंगे?
आप कह रहे हो बिल्कुल ठीक है, आम व्यक्ति के लिए।
आम व्यक्ति के लिए
जो पर्सन
हमारे देख रहे हैं वो कहते हैं कि अपने विचारधारा को सिंपल और कैसे बनाए, जो वो एलिवेटेड भी रहे अच्छी भी रहे, तो उसके लिए जो मेडिटेशन आप प्रैक्टिस करते हैं वो क्या बताती है? मैं आपसे ये बहुत मूल प्रश्न
इसमें एक तो मैं ये कहूंगा कि भी कम से कम राइट थिंकिंग तो जरूर करो
जी।
भले आप पॉजिटिव थिंकिंग नहीं भी कर सकते हैं, भले विस्तार से इसके बारे में चर्चा करनी चाहिए, परंतु मिनिमम तो हमें इसको अटेन करना ही चाहिए।
तो ये राइट थिंकिंग जो आप बताते हैं ये क्या योगाभ्यास से इजिली फिजिबल है?
योगाभ्यास अगर आप करने लगेंगे तो उसे सही पर्सपेक्टिव में आप देखेंगे, और क्योंकि आप सिचुएशन को सही पर्सपेक्टिव में देखेंगे तो इसलिए राइट थिंकिंग पॉसिबल है। अगर थोड़ा समय हो तो मैं आपको एक बात गहराई से थोड़ी बताना चाहता हूँ, जो पहले हम चर्चा कर रहे थे उस बात को, और क्योंकि इसने मेरे जीवन में भी परिवर्तन लाया है इसलिए आपको मैं बता रहा हूँ। कि जो हम निश्चिंतता की बात कर रहे थे कि परमात्मा पर फेथ हो तो सचमुच हम निश्चिंत बन सकते हैं, और वह कैसे? एक बहुत ही प्रेरणादायक उदाहरण है। एक बार एक संत थे, बस ऐसा ही उनका यही लक्ष्य था कि आध्यात्मिकता में जितना हो चरम सीमा पर पहुंचना है, और रास्ते में जा रहे थे तो एक कपल भी रास्ते में जा रहा था, नौजवान कपल जा रहा था, तो गलती से उसका पैर है वह पानी में पड़ गया, तो उस महिला पर कुछ छींटे पड़े, तो जो पति तो बहुत गुस्से में आ गया, उसको तीन चार चांटे लगा दिए, लेकिन वो कुछ भी नहीं बोला, कहा भाई माफ करो मेरी गलती हो गई, मेरा तो ध्यान ही नहीं था, और उसने कुछ उसका रिस्पांस नहीं दिया
जी।
तो पीछे से एक दूसरा नौजवान आ रहा था, उसने सोचा कि कमाल है, तो साधु है फिर भी इसकी पिटाई कर रहा है, तो उसने सोचा कि भाई ये जो दूसरा नौजवान था मैं भी उसको इसकी पिटाई कर दूं, लेकिन फिर दूसरा विचार आया कि वो खुद ही कुछ बोल नहीं रहा है, अगर वो थोड़ा अपोजिशन करे तो मैं भी फिर उसके अंदर साथ दूं और उसको ठीक करूं, तो कभी मैं तो क्या कर सकता हूं। वो तो साधु तो बाजू के रास्ते में चला गया
जी।
और फिर वह जो कपल है वो आगे गया, जब आगे गया तो रास्ते में पुराना सा मकान था, वहां पर कुछ फ्लावर्स भी थे, तो उस महिला ने अपने पति को कहा कि ये बहुत अच्छा फ्लावर है वो मुझे लाके दो, तो वो थोड़ा ऊपर चढ़ा, चढ़ने की कोशिश की तोड़ने की, और तोड़ने गया तो दीवार ही टूट गई और उसके पैर पर गिरी और फ्रैक्चर हो गया
जी।
तो दूसरे नौजवान ने देखा तो उसको एकदम लगा कि भाई ये पहुंचा हुआ साधु है लगता है, कि भी तभी तो कुछ नहीं बोला, इसको दो चार चांटे मारे तो भी, लेकिन देखो आगे गया तो इसका पैर उसने तोड़ दिया
जी।
तो भाग के गया उसके पीछे और जाके उसके पैरों में पड़ गया, कहता अरे अरे महाराज आप तो बहुत पहुंचे हुए है, आपने उसका पैर तोड़ दिया ना, क्योंकि उसने आपको ऐसे आपकी पिटाई की थी। तो कहा नहीं 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 मुझे तो कुछ भी पता नहीं है, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, बस मैं तो भगवान की याद में हूं। तो भी उसने कहा कि तो फिर कैसे ये हुआ? तो साधु ने थोड़ा सोच के कहा कि देखो शायद यह संभावना है, मैंने तो यह नहीं किया। कहा कि देखो भी उस महिला को थोड़े मेरे थोड़े छींटे लगे थे, उतने में उसने मेरी पिटाई कर दी, उसने उसको सहन नहीं किया, अपनी पत्नी को तकलीफ हुई तो देखो मैं तो भगवान का भक्त हूं, भगवान को याद करता हूं, और जब भगवान के भक्त को किसी ने ऐसे पिटाई कर दी तो भगवान कैसे सहन करेगा, हो सकता है कि भगवान ने उसका फ्रैक्चर कर दिया
जी।
तो इससे मुझे लगा कि हमें निश्चिंत होना है कि कर्मों का जो सिद्धांत है उसकी इफेक्ट अल्टीमेटली होगी।
डॉक्टर साहब आपने आज बहुत सुंदर रूप से स्पष्ट किया कि थिंकिंग ना केवल पॉजिटिव होनी चाहिए लेकिन एक एलिवेटेड थिंकिंग, और एलिवेटेड थिंकिंग या जीरो थिंकिंग हमारी लाइफ में तभी हो सकती है जब हम अपने जीवन में अध्यात्म को एक यथार्थ स्थान दें। आपका हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं स्टूडियो में आने के लिए। तो आपने देखा कि विचारधारा को शुद्ध पवित्र और यथार्थ बनाने के लिए जीवन में योग का मेडिटेशन का एक अनोखा स्थान है। यदि हम लोग अपने जीवन में जीवन से पलायन करने की जरूरत नहीं है, उससे दूर भागने की जरूरत नहीं है, लेकिन घर गृहस्थ में रहते हुए भी हम अपने जीवन के कुछ क्षण कुछ मोमेंट्स योगाभ्यास करें, राजयोग मेडिटेशन करें, तो हमारे जीवन में जो थिंकिंग है, हमारी जो विचारधारा है, वो ना केवल नेगेटिव से पॉजिटिव लेकिन पॉजिटिव से एलिवेटेड थिंकिंग बन सकती है, या कह सकते हैं साक्षी रूप भी हम होकर हर चीज को देख सकते हैं, जिसे जीरो थिंकिंग कहा जाता है। तो आशा है आपको हमारा यह एपिसोड पसंद आया होगा। आपको कुछ प्रश्न है, कुछ सवाल है, तो आप हमें लिख भेजिए। हमारा ईमेल है omshantistudio@gmail.com। आप हमें फोन भी कर सकते हैं, हमारा फोन नंबर है 9873666555। हम अपना अगला एपिसोड लेकर कल फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए मैं आज्ञा दीजिए, नमस्कार।
Oh, my God.